Beyond Cooking with Chef Rakesh Sethi.
A Pod One Production.
सभी लिस्टर्स को राकेश सेठी का स्वाद भरा नमस्कार. बियॉन्ड कुकिंग विद राकेश सेठी में आप सबका स्वागत है. हमारे जो आज के मेहमान हैं वो बड़ी ऑनेस्ट हैं. वो ऑनेस्ट इसलिए हैं क्योंकि जो उनका यूट्यूब चैनल है उसका नाम है ऑनेस्ट किचन. और सही में ये बहुत ईमानदारी से रेसिपीज को बताते हैं. ये अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं और बाई प्रोफेशन एक शेफ हैं, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं यूट्यूब में, जिन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया है, अपना नाम बनाया है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम शेफ भूपेंद्र. शेफ भूपेंद्र, आपका बियॉन्ड कुकिंग विद राकेश सेठी में स्वागत.
नमस्कार.
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 क्योंकि हमारे लिसनर जानना चाहेंगे कि आपको खाना बनाते हुए तो बहुत बार देखते हैं, लेकिन आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये जो आपकी जर्नी है बड़ी इंस्पायरिंग है काफ़ी लोगों के लिए. तो लोग जानना चाहेंगे कि आपके शुरुआती दिन कैसे थे, बचपन कहाँ गुजरा, स्कूलिंग कहाँ हुई, इसके बारे में कुछ बताइए.
वैसे मैं बेसिकली अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूँ, और लेकिन मैं जयपुर में ही मेरा जन्म हुआ और यहीं पर मैं पला बड़ा, और मोस्टली मेरी जो स्कूलिंग हुई, एजुकेशन हुई, मेरी यहीं पर हुई है. और मैंने होटल्स में जो काम किया है मोस्टली यहीं पे किया है. उसके अलावा मैंने यूएस में भी काम किया है, और जैसलमेर और दो तीन जगह और भी काम किया है, लेकिन मेरा मोस्टली टाइम मेरा जयपुर में.
शुरुआती दिन आपके जयपुर में बीते हैं, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और बहुत ही रंगीला राजस्थान जिसे हम कहते हैं उसका एक
बिल्कुल
जाना माना शहर है. और तो घर पर कौन कौन है आपके, या बचपन में कौन कौन थे आपके साथ?
सभी हैं सर, मॉम डैड हैं और भाई है, बहन है, सभी हैं. और अब मेरी पूरी फैमिली भी है, मेरी शादी भी.
तो
एक बच्चा भी है.
थी आपकी
स्कूलिंग? मैं जयपुर में ही हूँ सर. मेरी हुई है स्कूल थ्री डॉट से और एसएफ स्कूल से, और शुरुआत मतलब मेरे प्रसाद पब्लिक स्कूल है जयपुर में, यहीं पे लोकल, वहीं से हुई है.
और कोई आईएचएम या होटल मैनेजमेंट कुछ किया था?
हाँ, मैंने जयपुर आईएचएम से पास आउट किया था 2006.
आपने पास आउट किया था, तो पहली जॉब कहाँ लगी थी?
सर, मेरी पहली जॉब लगी थी सामोद पैलेस के अंदर 2007 में. वहाँ पे मेरी जॉब लगी थी, जॉब इन द सेंस जॉब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, आईटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के बाद में वहाँ पे मेरे को लगी.
इस लाइन में यानी कि किचन लाइन में कोई और भी है परिवार से, या आप ये अकेले पहले शख्स थे?
नहीं नहीं सर, कहते हैं ना कि उत्तराखंडी लोग और सिर्फ होटल लाइन और फौज में जाते हैं, वही वाली कहानी है. तो मेरे सबसे बड़े चाचा हैं, वो भी इंडस्ट्री में थे काफी टाइम से. वो ताज में काम किया, दिल्ली ताज में उन्होंने काम कर रखा था, तो इंडियन सेक्शन में थे स्टार्टिंग से. और भी मेरे मतलब काफी चाचा लोग हैं, मामा लोग हैं, उनका नाम है गोपाल सिंह रावत.
मेरे बहुत सारे शेफ हैं जो बड़े करीबी शेफ हैं और बहुत बेहतरीन शेफ हैं उत्तराखंड से, जितने भी शेफ आते हैं, एक तो ये बहुत मेहनती होते हैं, दूसरा हुनर बड़ा अच्छा होता है, मतलब शिद्दत से काम करते हैं. और मैंने देखा है आपकी वीडियोस में, आप भी बड़ी लगन और सच्चाई से काम करते हैं. तो आपके चाचा भी ऐसे ही थे?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो उनके सामने तो हम कुछ नहीं, लेकिन ये है कि मतलब वो बहुत ही कहते हैं ना, हद से ज्यादा अपने काम में डूबे वाले इंसान.
और फादर का क्या प्रोफेशन था?
फादर मेरे मेट्रोलॉजिकल सेंटर मौसम विभाग में थे और अभी रिटायर.
उन्होंने बचपन में ही बता दिया, बचपन में उन्होंने भी जज कर लिया होगा मौसम आगे का, ये है कि मेरा बेटा शेफ बनने वाला है.
हाँ, बस ये था कि स्टार्टिंग में जैसे कि कहते ना, उत्तराखंड के अंदर एक छोटा सा वो है कि होटल लाइन में जाना, मतलब जैसे पढ़ लिख के होटल लाइन में जाना कोई बहुत बड़ी आपने कोई तीर नहीं मार दिया, कहने का मतलब ये है. तो कहते ना, तो मैं होटल लाइन में गया, मेरे फादर ने मुझे बोला था कि मैं ट्वेल्थ में था, तो मेरे फादर ने मुझे बोला था कि आप इंजीनियरिंग कर लो. ठीक है, मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे बाहर जाना, मेरे एक चाचा हैं जापान में रहते हैं, तो उनकी मेरी इच्छा थी कि मैं भी बाहर जाऊँ बाहर जाऊँ बाहर जाऊँ वाली याद होती है. तो पापा ने मुझे बोला कि नहीं नहीं आप मत करो होटल लाइन, क्योंकि काफी लोग थे हमारे इंडस्ट्री के अंदर, तो मेरे पापा चाहते नहीं थे कि मैं इंडस्ट्री के अंदर जाऊँ. तो मैंने बोला नहीं नहीं मुझे यही काम समझ में आता है, और मुझे काम समझ में आता ही नहीं है. तो फिर मैंने बोला नहीं मुझे आईएचएम करना है और इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है. तो फिर उन्होंने बोला चल कोई बात नहीं, आप होटल लाइन ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन अब एक काम करो, किचन ज्वाइन मत करो, बहुत मेहनत होती है, क्योंकि सब पता है उनको कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो बोले तुम नहीं कर पाओगे, तुम इस तरह के काम नहीं कर पाओगे, तुम कुछ और करो, तुम फ्रंट ऑफिस कर लो, तुम सर्विस में ज्वाइन कर लो या हाउसकीपिंग ज्वाइन कर लो। मैंने बोला मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। फिर मैं मतलब मेरी मर्जी चली, उन्होंने उनकी मर्जी चली नहीं कहीं पे भी, तो उसके बाद में मैंने अपनी होटल लाइन ज्वाइन करी और मेरी इच्छा थी कि मैं बाहर जाऊँ, मैं गया भी और उसके बाद गया भी। मेरे एक चाचा है जापान में रहते हैं, वो काफी 15-20 साल से वहीं पे हैं, तो मेरी इच्छा थी कि मैं भी बाहर जाऊं। इस तरह से उसी तरह से एक इंप्रेशन आया, मोटिवेशन आया उनको देख के, वो था। बाद में चीजें चेंज होती गई, फिर बाहर जाने का मन इतना वो नहीं होता कि भाई हाँ बाहर जाना इतना जरूरी नहीं है, इंडिया में आप बहुत कुछ कर सकते।
बिल्कुल, मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं फौज में ना जाऊं, क्योंकि वो फौजी थे, तो हमेशा पेरेंट्स की एक यू नो तमन्ना होती है कि उनका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो मेरे टाइम में ये बात है 80s की, होटल लाइन में जाना तो अच्छा माना ही नहीं जाता था। तो क्योंकि आप उत्तराखंड से आते हैं और आप बताते हैं कि ज़्यादातर लोग होटल लाइन में ही जाते थे, तो क्या ये लोगों को सोसाइटी में पसंद आता था ये काम, या वहाँ पे भी लोग कहते थे क्या होटल में जाएगा और ये सब करेगा?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आता था। आप अगर उत्तराखंड में किसी से पूछेंगे ना कि जैसे अभी किसी को अब जाके तो है, स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मतलब कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ था कि हाँ ठीक है, क्योंकि हमारी हम लोगों ने काफी हमारे जो गांव में या शहर में कहीं पे भी जाओ होटल लाइन में जा रहे हो, इसमें कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मार लिया, बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया तुमने। और मोस्टली क्या होता है, आप गढ़वाल में या फिर उत्तराखंड में या कुमाऊं में कहीं जाएंगे तो बोलते हैं कि हाँ होटल लाइन में जा रहा है बस, हाँ ठीक है, तो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या कहते हैं, जब मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तो मेरे घर वाले भी, मेरे फैमिली के लोग भी, मतलब कोई खुश नहीं था, कोई भी खुश नहीं था। उनकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं और मैं कुछ आगे बढ़ूं और दूसरी चीज को ज्वाइन करूँ, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था इंडस्ट्री को, तो उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं।
बड़ा उत्सुक हूं जानने के लिए कि जिन्होंने उस समय कहा था कि नहीं जाना चाहिए होटल लाइन में, अच्छी लाइन नहीं है, या क्या तीर मार लिया, आज वो आपको इस कामयाबी के मुकाम पर देखते हैं तो क्या कहते हैं?
अब तो सब गायब हो गए, उनका तो अता पता ही नहीं है कि वो क्या है। हाँ, इस टाइम बहुत खुशी होती है कि जैसे अब जरूरी थोड़ी कि कोई इंसान कर नहीं पाया तो इसका मतलब ये कि हर इंसान नहीं कर पाएगा, वही वाली बात होती है। तो हमारे हमारे इंडस्ट्री में हो गया या हमारे मतलब आप मोस्टली किचन लाइन में देखेंगे तो आपने देखा होगा कि मोस्टली गढ़वाली शेफ और उत्तराखंडी शेफ काफी ज्यादा तादाद में होते हैं, काफी ज्यादा तादाद, और उसमें अनलिटरेट ज्यादा होते थे पहले। पहले अनलिटरेट होते थे, मतलब कि जिसको कुछ काम नहीं आता वो
होटल में हुनरबाज होते हैं। देखिए पढ़े लिखे ना भी हो, हुनर इतना अच्छा होता था उनमें।
हाँ, लेकिन धीरे 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 करके वो बहुत ज्यादा आगे बढ़े, और मुझे बहुत खुशी होती है कि क्या कहते हैं इस तरह के लोग आगे बढ़ते हैं और अपना मतलब खाना बना के उन्होंने अपना नाम, एक मैं नाम लेना चाहूंगा, पुष्कर शेफ हुआ करते थे, ठीक है। अभी बाहर कुवैत में उनको पढ़ना लिखना ज्यादा नहीं आता है, बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन अभी वो मास्टर शेफ है, मतलब हेड शेफ हैं, और उनको अभी इतने ज्यादा लिटरेट भी नहीं है उनके, लेकिन उनका नाम है। बहुत से लोग ऐसे जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता,
लेकिन ये काम जो है ना कला है, ये हुनर है हाथों का, जो हाथों में जादू आ गया पढ़ाई लिखाई फिर सेकेंडरी हो जाता है, और आपका हुनर बोल रहा है। आपके फादर ने भी बोला फ्रंट ऑफिस चले जाओ, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी भी रखते हैं, पर खाना बनाने का शौक आपको बचपन से था या इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद लगा कि मैं तो शेफ बनना चाहता हूँ?
ये इंसिडेंट्स हो गया सर।
क्या
इंसिडेंट्स हो गया? मेरी मम्मी मोस्टली बीमार रहती थी स्टार्टिंग में, तो और मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी थी, बड़ी सिस्टर थी, तो फिर वहाँ पे बात आई कि इतने खाना बनाने की, मेरे पापा मॉर्निंग में चले जाते थे ड्यूटी, और कई बार उनकी ड्यूटी ट्यूर की ड्यूटी हुआ करती थी, तो घर में कौन रहे, तो वो वाली बात थी। तो धीरे धीरे करके मतलब आप मानेंगे नहीं, 12-13 साल के बच्चे आज खाना कहाँ, अभी मेरे बच्चे को बोलूंगा तो चाय बना पाएगा ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा 12 साल का बच्चा। मैं 12 साल का बच्चा था, मैं रोटी भी बनाता था और सब्जी भी बनाता था, बहुत बड़ी बात थी। मेरी मम्मी बहुत अप्रिशिएट करती है इस चीज को, वहाँ मतलब स्टार्ट जब वो बीमार थी उस टाइम पे, तो बीमारी में मैंने काम सीखा था और धीरे धीरे करके मुझे लगाव हो गया इस चीज से।
और जब आप खाना बनाते थे तो प्रतिक्रिया क्या थी परिवार वालों की, खाना खाने के बाद वो क्या कहते थे?
उनकी बहुत अच्छी, मेरे क्या है कि मेरी इच्छा रहती थी हमेशा कि उनको नई नई चीज सिखाऊं, नई नई चीज उनको खिलाऊं। तो जैसे ये होता था कि मैं रेसिपीज देखता था और काफी चीजें रेसिपीज बुक्स भी पढ़ता था, और खासतौर से अगर आपका नाम लूंगा, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, तो संजीव कपूर और राकेश सेट्टी दो नाम हुआ करते थे। और उस टाइम यूट्यूब तो होता नहीं, तो सब टीवी देखा करते थे, तो आप लोगों के हर तरह, आप जब मुस्कुरा के जब सिखाते थे आप और संजीव कपूर, तो हमको बहुत खुशी होती थी, उसी चीज से हम सीखते थे।
तो ये बताइए कि ये तो आपने बताया कि आपको खाना बनाने का शौक हुआ और सबको पसंद भी आता था, लेकिन मदर आपने बताया बीमार थी, तो अब कैसी हैं और ये बीमारी क्या लंबा चली थी?
हाँ, उस टाइम पे लंबी बीमारी थी, मेरी मम्मी को सांस की बीमारी है, तो उस टाइम तो काफी ज्यादा हो गया था, तो उस वजह से क्या कहते हैं, मतलब रहती थी, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल बेड पे रहती थी, काम भी करती थी, लेकिन यही वाली बात है ना कि आप मम्मी बीमार है तो आप काम क्यों करवा रहे हो, तो वो वाली आती थी कि हम स्कूल भी जाते थे, हम स्कूल से आने के बाद में शाम को सब्जी काटना, ये करना, इस तरह की चीजें, मेरा छोटा भाई था, हम दोनों मिलके काम करते थे, तो वो मेरी मम्मी को पसंद आता था बाद में, तो धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया।
ये तो बहुत अच्छा हुआ, और देखिए जो आपका इंटरेस्ट था वो आपको इस मुकाम पे आज ले आया कि आप आज एक जाने माने शेफ हैं और यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हैं और आपकी रेसिपी को तमाम दुनिया के लोग फॉलो करते हैं। सो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ये मुकाम आसानी से नहीं पाया, बहुत मेहनत से पाया। होटल लाइन में जब आपने ज्वाइन कर लिया तो शेफ आपको काम आसानी से सिखाया या कोई आपको इसमें स्ट्रगल करनी पड़ी और चैलेंजेस थे काम सीखने में शुरुआती दिनों में?
सब मैं बात कर रहा हूँ 18 साल पुरानी बात, 18 साल पहले या 20 साल पहले इतना आसान नहीं था होटल इंडस्ट्री के अंदर काम सीखना, ये आप बात आपको भी बताई है, क्योंकि जो उस्ताद लोग होते थे ना, अब वो चीज तो अच्छी सिखाते थे लेकिन बहुत मुश्किल से सिखाते थे। तो एक छोटी सी एक वाक्य आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसके लिए आज ये जो बात बता रहा हूँ ये बहुत छोटी लगेगी लोगों को, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, देखो मेरे को इतनी 18 साल बाद में भी याद है। धनिया पकड़ के जो हम चॉप करते हैं फाइन चॉप, एक पूरा बंडल जिसमें पूरी मुट्ठी बनती है, एक साथ आधा आधा किलो के आसपास धनिया एक साथ चॉप करना फाइन करके, तो वो सीखने के लिए मेरे को एक शेफ को बहुत ज्यादा पैम्पर करना पड़ा था कि प्लीज शेफ मेरे को ना ये धनिया काटना है, कैसे सीखूं बता दीजिए प्लीज। तो मतलब क्या कहते हैं, उनको नाइफ ही नहीं देते थे मेरे को, और फ्राई पैन पे हाथ लगाना बहुत मुश्किल काम होता था, कि मतलब आपको कुछ करके दिखाना होगा, ऐसा कुछ करके दिखाना होगा तब आपको फ्राई पैन मिलेगा, तब आप तड़का लगाओगे या ऑर्डर लगाओगे, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी एक ट्रेनी लेवल पे, एक
रेंज पे तो।
लेकिन आज इतना, हाँ लेकिन आज सब चीज चेंज हो चुकी है, आज इतना वो नहीं है, आज एक थर्ड कॉमी भी कर रहा है, कोई वो नहीं है, मतलब लेकिन मैंने ये चीज सीखी है कि जो बड़ी मुश्किल से चीज आती है ना वो बिल्कुल
नहीं है इंसान, और रेंज पे आना या फ्राई पैन पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो आपको चॉपिंग कटिंग मीज़ाप्ला करना, जैसे मीज़ाप्ला कहते हैं तैयारी, प्री प्रिपरेशन करना, ये तक सीखने नहीं देते थे। उस्तादों को ये डर रहता था कि कहीं ये काम सीख के हमसे आगे ना चला जाए, तो उनका हुनर, क्योंकि एजुकेटेड नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से उनको यही डर लगता था कि हुनर हमारा जो है वही हमें अपने पास रखना है। लेकिन वक्त बदलता गया और आज तो हम टेलीविजन पर रेसिपीज दिखाते हैं आपको, कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन लोग दिखाते हैं, जिसको सीखना है सीखे, लेकिन कहा जाता है कि रेसिपी से कुछ नहीं होगा, जब हाथों में जादू नहीं होगा या हुनर नहीं होगा तो आप कितनी भी रेसिपीज पढ़ लें आप खाना नहीं बना पाएंगे, यहाँ से बनता है खाना दिल से। और खाने में सच्चाई, आपकी तो किचन का नाम ही है ऑनेस्ट किचन, आपने कैसे इस नाम को रखा कि मैं अपनी किचन का नाम ऑनेस्ट किचन रखूंगा?
मैं वीडियो देखता था लोगों की, तो लोग गलत दिखाते हैं होटल लाइन के बारे में, गलत दिखाते हैं, और कॉपी पेस्ट का एक प्रोसेस चल रहा है, कॉपी पेस्ट कि एक ने बनाया उसको कॉपी दूसरे ने कर दिया, बस एक चल रहा है तो उस प्रोसेस को कर रहे हैं, और जिसने गलत दिखा दिया, कई बार ऐसा होता है ना कि होटल इंडस्ट्री के अंदर बल्क में खाना बनता है तो उसकी रेसिपी थोड़ी सी अलग तरह से बनाई जाती है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं ये सीक्रेट है, ये शेफ का सीक्रेट, अब वो सीक्रेट नहीं है भाई, वो क्या कहते हैं उसका काम करने का तरीका है, क्योंकि वहां पे बल्क में काम कर रहा है, उसका काम करने का तरीका अलग है, तो उसको मतलब गलत तरीके से बताना हर चीज को। तो मैंने क्या, अपने होटल में रहता था तो मेरी इच्छा थी कि मैं होटल से रिलेटेड लोगों को बताऊं कि वो जो खाना खाते हैं बाहर बैठ के, जो खाना खा रहे हैं आखिर खाना खा क्या रहे हैं, वो बनता कैसे, खाना होटल के अंदर कैसे बनता है। तो मैंने छोटे मोटे शूट किए थे, स्टार्टिंग में बताया भी था लोगों को कि भाई, लोगों ने मुझसे पूछा सर आप ऑनेस्ट किचन की बोलते हो क्या, अनऑनेस्ट है क्या, हाँ डिसऑनेस्ट है क्या सब बाकी? तो बोले नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी लोग डिसऑनेस्ट है, मेरा कहने का मतलब है कि मैं ऑनेस्ट हूँ बस, क्योंकि मैं जो चीज दिखा रहा हूँ आपको वो प्रॉपर सही दिखा रहा हूँ। मेरा मेरा जो एम था, मैंने अपने उस पर भी टैगलाइन है मेरी कि मेरा रेसिपी सिखाना मेरा काम नहीं, ठीक है, रेसिपी सब लोग सिखा रहे हैं, मेरा सिखाना है कि आप इस खाने के अंदर जान कैसे लेके आओ। अब तेल के अंदर जीरा डाला, जीरा डालना तो सब दिखाएंगे भाई जीरा डाला, लेकिन तेल के अंदर जीरा कब डालना है और वो कितनी देर तक डालना है, कब वो फटेगा और कब बाकी चीज डलेगी, ये बहुत ही बारीकी चीजें मेरी इच्छा थी कि हर आदमी को सिखाऊं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब लोग बोल भी रहे थे कि सर आप डीपली क्यों सिखाते हो, आपको डर नहीं लगता क्या कि क्या कहते हैं आप अपना हर चीज हर सीक्रेट आप लोगों को बता देते हो? मैंने बोला यार मैंने तो इतने लोगों को सिखाया, मेरे को तो आज तक फर्क पड़ा नहीं,
बल्कि इसीलिए मैं ऑनेस्ट किचन नाम रखा क्योंकि मैं ऑनेस्टली जो ट्रेड है उसके सीक्रेट्स बताना चाहता हूँ। देखिए हर किसी की ये तमन्ना होती है कि होटल जैसा खाना या रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पर कैसे बनाए, और उसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि होटल में थी हम ऐसे बनाते हैं और होटल की रेसिपी बनाने का तरीका होता भी डिफरेंट है। जब आपने वो दिखाना शुरू किया तो लोगों का कनेक्ट आपसे बनना शुरू हुआ और वहीं लोगों ने देखा कि ये है वो खाना जो हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि घर का खाना तो घर की लेडीज बड़े अच्छे से बनाती आ रही हैं और सालों से बनाती आ रही हैं, उनको क्या सीखना था, उनको सीखना था कि होटल का खाना घर पर कैसे बनाए। तो वो आपने किया और उस कनेक्ट को आपने इतना अच्छे से निभाया और इतनी ऑनेस्टली निभाया कि आज आपके काफ़ी ज़्यादा तादाद में फॉलोअर्स हैं और जितना आप सच्चाई से दिखा रहे हैं उतना आप बड़े होते जा रहे हैं। तो ये होता है सच्चाई का फायदा।
जी बात कहना चाहूँगा, मैं अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर को स्वाद के मित्र कहता हूँ।
बहुत अच्छा नाम दिया आपने।
इसके पीछे ये है कि मेरी भी लर्निंग नहीं रुकी है, मेरे को बहुत कुछ सीखना है और इंसान की लर्निंग रुकनी भी नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सामने वाला ना मेरा शिष्य है ना मैं उसका गुरु, हम सब स्वाद के मित्र हैं और सारी इसी चीज को हम ढूंढने लगे हैं।
और ये रिश्ता जो स्वाद के मित्रों का है, देखिए आप उनका दिल उनके पेट के जरिए जीतना चाहते हैं और वो आप कर रहे हैं और वो बड़ी सच्चाई से कर रहे हैं। और आपने एक ही कुजीन रखी है इंडियन या आप और भी कुजीन्स में खाना दिखाते हैं?
नहीं नहीं सर, मैं कॉन्टिनेंटल कुजीन भी है मेरी और एशियन भी है और इंडियन की भी है।
और आपका अपनी किचन में स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था, इंडियन किचन था या आप भी ऑलराउंडर हैं?
नहीं सर,
मेरा बैकग्राउंड जो है वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल किचन है, लेकिन हाँ। क्योंकि आप घर पे और शुरू से इंडियन खाना भी बनाते आए हैं, फिर होटल में जाके आदमी जब 4-5 साल हो जाते हैं तो वो हर ट्रेड में थोड़ा थोड़ा काम सीखता जाता है, और उसके बाद तो यदि आप रोज यूट्यूब पे बनाने लगे तो अपने आप हाथ जो है वो, क्योंकि आपको मालूम तो है कैसे बनता है, सिर्फ ये होता है कि बस एक बार बनाने की देर है और परफेक्शन तो आ ही जाती है काम में। वेरी नाइस, कंटिन्यू गुड जॉब, गुड। शेफ भूपिंदर, आपके परिवार में इस समय आपकी वाइफ हैं, बच्चे कितने हैं और क्या क्या करते हैं वो?
सर वाइफ है और एक बच्चा है मेरा, और बच्चा भी 8 में चला गया है, और वाइफ मेरे साथ में काम करती है, मेरे साथ में कैमरा होल्डिंग और बाकी चीजों को देखती है, और भी मेरी टीम में और भी टीम मेंबर्स हैं जो कि क्या कहते हैं एडिटिंग वर्क करना और बाकी चीज में, मतलब पूरा कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। स्टार्टिंग बहुत डाउन से हुई थी, बाकी सब चीजें मैंने करी थी, एक कैमरा था, एक मोबाइल से मैंने स्टार्ट किया था, और आज मैंने मेरे पास में कम्प्लीटली एक सेटअप है और कम्प्लीटली एक टीम है मेरे पास में आज, और उसमें मेरी वाइफ भी मेरा साथ देती
है। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको इवॉल्व होते हुए देखा है, मैंने देखा है कि पहले आप होटल की किचन में ही अपने मोबाइल से कोई रेसिपी को दिखाते थे जिसमें सिर्फ फ्राई पैन दिखता था, उसके बाद धीरे धीरे आपने एक छोटा सेटअप बनाया जिसके अंदर थोड़ा प्रॉप्स और बैकड्रॉप लगा के आपने कुकिंग शुरू करी, उसके बाद आपने प्रॉपर अब एक शो किचन या एक लाइव किचन बनाई है, स्टूडियो किचन बनाई है जिसमें आप अब रेसिपीज अपनी दिखाते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो स्टेजेस हैं इवॉल्व होने के, ये दिखाते हैं कि कैसे धीरे धीरे आपने प्रगति करी, तरक्की करी, और ये काम जो है लोगों को पसंद आता गया और बड़ा होता गया। तो इस स्ट्रगल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स और लिसनर्स दोनों को?
मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, जॉब कर रहा था मैं, मेरी इच्छा थी कि ऐसी क्या कहते हैं कि वीडियोस बनाए, मेरा ऐसे कुछ नहीं था कि मेरे को यूट्यूब में फेमस होना है या ऐसे कुछ होना है, मेरी मैंने किसी को देखा था कि यार ये बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ। तो मेरे को ना कुछ भी नहीं आता था, मैं जीरो था इस चीज में, ना एडिटिंग मेरे को आती थी, ना मेरे को क्या कहते हैं कैमरा पकड़ना, कुछ भी नहीं। मेरे पास था भी नहीं कुछ भी। और आपको बता दूं, एक 10-12 हजार का मोबाइल हुआ करता था 2017 के अंदर, उससे मैंने स्टार्ट किया था। और वहां से मेरे पास ना माइक था, ना कुछ था, ना लाइट थी। मैं क्या कहते हैं, दो बड़े बड़े बल्ब में क्या कहते हैं बटर पेपर लगा के उनकी लाइट को सॉफ्ट करने की वो करता था। और मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था, तो मैं लकड़ी को क्या कहते हैं उसमें रबड़ बैंड से बांध के मोबाइल को, और जैसे कि दाल के डब्बे में सेट करना, ऐसे करके उस तरह से मैंने काम स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरे साथ में कोई भी नहीं था। मेरी वाइफ भी बोलती थी, क्या कर लग रहे थे किचन के अंदर, ऑफ है, आराम करो, थोड़ा सा कहते घूमने फिरने जाओ। लेकिन मेरी इच्छा थी यार, पता नहीं कि कुछ करना है, कुछ लोगों को कुछ मेरे को लग रही थी, मिसिंग लग रही थी। कई लोगों ने मुझे बोला भी था कि सर दूसरा काम कर लो, कुकिंग में तो कुकिंग चैनल्स के तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बहुत ज्यादा है कुकिंग के अंदर। मैंने बोला क्या कर लू भाई, मैं तो बोला सर कॉमेडी कर लो आप। मैंने बोला यार मुझे यूट्यूब पे काम नहीं करना है, मेरे को काम ही खाना बनाना आता है, मुझे और कुछ नहीं आता है। बोले सर सक्सेस नहीं हो पाओगे आप इसके अंदर, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल है और बहुत से लोग है ना लगे रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी आज तक सक्सेस मिली नहीं लोगों को, करोड़ों लोग हैं इसके अंदर, आप चेक कर लो बहुत से कुकिंग चैनल। मैंने बोला नहीं होंगे कोई बात नहीं, अपनी नौकरी चल रही है, जिंदाबाद, अगर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो ठीक है। बाकी तो मैंने इसको भी प्रोफेशनल लिया ही नहीं था, एक अपना क्या कहते हैं एक साइड काम था ऑफ के दिन करना, जिससे नॉलेज हो जाएगी और कुछ नहीं, कैसे को कैमरे को होल्ड करते हैं, कैसे क्या कहते हैं एडिटिंग करते हैं, चीजें सीखते हैं, सीखने के पर्पज से मैंने स्टार्ट किया था। और धीरे 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 करके मेरे को जब प्यार मिलने लगा लोगों का, तब मुझे लगा यार नहीं सही में बहुत अच्छा काम कर रहा हूं।
ये बहुत अच्छी बात है, आपने लोगों की नहीं सुनी और इसको रोका नहीं, और आपके मन की जो इच्छा थी वो आप करते रहे, जिसके कारण आज आप इस मुकाम पर हैं और ऑनेस्ट किचन को लोग लगातार प्यार देते हैं, देखते हैं और आपकी रेसिपीज को सराहते भी हैं। अब जो राउंड है इसका नाम है रैपिड फायर राउंड, इसमें आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपने उसका जवाब जल्दी से जल्दी देना है। इसमें सबसे पहला सवाल शेफ भूपेंद्र आपके लिए ये है कि आपने बहुत सारे होटल्स में काम किया, सबसे फेवरेट होटल का जो पीरियड था आपका कौन से होटल का रहा?
सबसे सुपीरियर मेरा सर रेडिशन होटल है, जो कि जयपुर में है, रेडिशन ब्लू टोंक रोड पे, वहां पे मैंने बहुत टाइम काम किया है, लगभग 5 से 7 साल, और मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वहीं पे रहा है मेरा।
कॉर्पोरेट शेफ कौन था वहां का?
शेफ राकेश सेठी।
नहीं, गुड। और हमारे ये कल्चर है रेडिसन होटल का कि यू नो हम कहते हैं कि वी ग्रो टैलेंट एंड टैलेंट ग्रोज अस, जैसे जैसे आप खुद बड़े होते हैं कंपनी भी बड़ी होती है। सो आई एम प्राउड कि आप मेरी टीम से हैं और इस प्रोफेशन से हैं, और मुझे आपकी रेसिपीज बहुत पसंद आती हैं, सो कंटिन्यू द गुड जॉब। शेफ, हम लोग बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ खाना बनाते हैं, लेकिन एक इंग्रेडिएंट हमारे दिल के बहुत करीब होता है, और वो आपके दिल के करीब वाला कौन सा इंग्रेडिएंट है जो आपके पास होना ही चाहिए फ्रिज में या आपके किचन में?
मेरी एक टैगलाइन है, जब मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ तो मैं उस इंग्रेडिएंट का नाम नहीं लेता कई बार, फिर भी मेरे जो व्यूअर्स हैं और मेरे स्वाद के मित्र हैं वो उसका नाम जानते हैं। मैं इतना सा बोलूंगा ना श्रद्धा अनुसार, तो लोग समझ जाएंगे मैं क्या डाल रहा हूँ। श्रद्धा अनुसार मतलब कि मैं धनिया डालूंगा, अच्छा इनकॉन्टिनेंटल बना दूं या चाइनीज बना दूं या इंडियन बना दूं, धनिया मेरे को डालना ही डालना है। और श्रद्धा मतलब बहुत ज्यादा, मतलब दिल खुश होकर डालना है, धनिया मुझे चाहिए।
तो हमारी कुछ रेसिपीज में तो कुछ इंग्रेडिएंट पे ये बात लागू हो जाती है कि मोर द मेरियर, यानी जितना ज्यादा डालोगे उतना बढ़िया स्वाद बनेगा, सिवाय नमक के और मिर्च के, बाकी चीजें तो आप थोड़ी बहुत ज्यादा डाल भी लें तो कुछ नहीं खराब होता है। तो जब आपने बताया कि आप वेस्टर्न किचन बैकग्राउंड से हैं लेकिन इंडियन खाना भी बनाते हैं, तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी है?
सर फेवरेट डिश अगर बोली जाए तो एक होते ना कि होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड फेवरेट डिश या एक घर से रिलेटेड फेवरेट डिश, तो मैं प्रेफर करता हूँ सर अपने घर के, जो एक मेरे घर में एक भटकी चुड़कानी बनती है सर, भटकी चुड़कानी, इसका टेस्ट मैंने कहीं पे कंपैरिजन ही नहीं कर पाया हूँ आज तक, भटकी चुड़कानी। और मतलब हम इसके लिए, मतलब मैं मरता हूँ इसके लिए, अगर ये बन जाए तो मजा आए।
तो भटकी चुड़कानी जो है, इसके बारे में हम एक चीज करेंगे कि आपको मैं इनवाइट करूंगा अपने स्टूडियो में और आप ये रेसिपी तब भी बनाइएगा, है ना, ताकि लोगों को पता लगे।
बिल्कुल, तो बिल्कुल।
अगला सवाल आपके लिए ये है कि आप बहुत जगह ट्रेवल करते हैं और अलग अलग शहरों में जाके भी खाना बनाते हैं, तो आपको भारत में से कौन सी कुजीन सबसे ज्यादा नजदीक है आपके दिल के?
स्ट्रीट फूड में देखें सर तो पंजाबी फूड मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, तो वहां पे क्या वर्सेटाइल है काफी खाना, और खास तौर से कुलचा, जो अमृतसरी कुलचा होते हैं वो मेरे बहुत फेवरेट हैं, जो मैं मतलब कहते हैं बोलते हैं ना जैसे कि दिल को छू जाते हैं, और अगर मिल जाए तो चाहे आप एक अमृतसरी कुलचा होता है, आप सुबह के 7 बजे खा सकते हो, आप दिन के 2 बजे खा सकते हो, और रात के 8 बजे या 10 बजे भी खा सकते हो, मतलब ये कभी भी आप खा सकते हो, आप आपका पेट भरेगा और आपका दिल खुश हो जाएगा अमृतसरी कुलचा के लिए।
कुलचा के लिए मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि आपने कई होटलों में कुलचा नाम सुना होगा, ऑर्डर किया होगा, खाया होगा, लेकिन असली अमृतसरी कुलचा आप अगर अमृतसर में जाके ही खाएं तो आपको फर्क भी मालूम पड़ेगा और ये भी मालूम पड़ेगा कि होता क्या है अमृतसरी कुलचा। क्योंकि कई बार हम मेन्यू में पढ़ लेते हैं अमृतसरी कुलचा, लेकिन जो सामने आता है वो कहीं नज़दीक भी नहीं होता उसके। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और आपने भी दिखाया होगा बना के और हमने भी कई बार बनाया, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि किसी को अगर इसका स्वाद लेना है तो एक बार ज़रूर ट्रेवल करते समय अमृतसर में जाकर उसको खाएं।
बिल्कुल बिल्कुल सर।
शेफ, आपने बताया आपकी माँ जब बीमार थी तो भी आप खाना बनाते थे, होटल में भी आप शेफ हैं, खाना बनाते हैं, जब आप घर आते हैं तो खाना कौन बनाता है घर पर अक्सर, आप या आपकी वाइफ?
सर हमारे घर में ऐसा है कि जब स्पेशल बनेगा तो मैं बनाऊंगा, और घर पे रेगुलर बनेगा, जब घर का रेगुलर खाना है वो सिर्फ वाइफ के हाथ का ही लोगों को अच्छा लगता है, मतलब मेरे घर में सबको मेरे वाइफ का ही हाथ का अच्छा लगता है, और मैं बोलता हूँ कि वैसे उसको चिढ़ाने के लिए कहता हूँ कि तू मुझसे सीख गई है, काफी मुझसे सीखा है, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं सीखा भाई, मेरी रेसिपी चलती है, होंगे अपने शेफ कहीं पर और के लिए, हमारी रेसिपी अलग है। तो मतलब क्या कहते हैं, कहने का मतलब यह है कि उसका जो खाना बनाने का तरीका है वो कैन यू बिलीव इट कि एक छोटा चम्मच में सब्जी बना देती है सर, और ये हाँ, और क्या कहते हैं उसको मीट मसाले भी ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, मतलब इतना हेल्दी फूड और इतना टेस्टी फूड, मैं तो मेरी कई बार मेरी भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक कम मतलब एक शेफ के लिए तो मतलब उसको तेल और काफी मसाले और सारी चीजें चाहिए होती हैं, हाँ तब जाके क्या कहते हैं उसका टेस्ट डेवलप कर पाते हो, लेकिन वहां पर एक छोटा चम्मच या थोड़ी सी बूंदों की तेल के साथ में आप सब्जी बना रहे हो और इतना हेल्दी खाना और इतना टेस्टी खाना मिल रहा है, इससे ज्यादा बेहतर।
वैसे आपने मेरे सवाल अगले सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है, लेकिन फिर भी कस्टमरी है मेरे लिए पूछना कि आपकी किचन का नाम है ऑनेस्ट किचन और आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, तो ऑनेस्टली बताइए कि खाना स्वादिष्ट कौन बनाता है सही में, आप या आपकी वाइफ?
अगर मैं टेस्ट की बात कहूँ तो सर वाइफ ही खाना अच्छा बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लेकिन जहां तक मैं कुछ चीजें फिक्स होती हैं, जैसे कि आलू के पराठे मेरी मम्मी ही बनाएगी, उनके अलावा कोई नहीं बनाएगा, एक सहजन की फली की सब्जी बनती है मेरी मम्मी बनाएगी, एक पालक का काफ बनता है वो मेरी मम्मी बनाएगी, ऐसी चीजें फिक्स रहती हैं लोग उसके लिए। वाइफ के लिए रहता है कि हाँ ये दाल तड़का बनाती है वो दाल तड़का वही बनाएगी, या भड़की चुड़कानी मेरी वाइफ ही बनाएगी, घर में कुछ बिरयानी बनानी हो या कुछ मीठा बनाना हो या कुछ केक बनाना हो या कुछ पास्ता या रिलेटेड पिज्जा, तो भाई पापा ही बनाएंगे और शेफ
भी बनाएंगे। ये बिल्कुल सच बात है, और ये मेरे घर में भी होता है कि आज भी मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन जब कड़ी बनाने की पंजाबी कड़ी बनाने की बात आती है तो मेरी माँ को बुला लाती है कि मम्मी आप ही बनाए इसको, या करेले की सब्जी जो भर के करेले बनते हैं वो बनाने होते हैं तो मेरी माँ को ही बोला जाता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता, मैं सरेंडर करती हूँ आपके सामने, आप ही बनाइए। वैसे ही स्पेशल डेज जब कभी होते हैं तो मेरी बारी आ जाती है, वुमेंस डे पे, मदर्स डे पे, या बच्चों को स्कूल से कोई डिमांड आ जाए कि आज ये बना के लाना, तो उनके फ्रेंड्स के लिए मैं भी कुछ बनाता रहता हूँ। तो ये अच्छा है, मिलजुल के रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, और आपने ये ऑनेस्टली कहा भी, ये भी अच्छी बात है कि हम ये मानते हैं।
एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर आपको, कमेंट्स आते हैं मेरे पास में कि सर आपकी वाइफ के लिए मेरे कमेंट्स आते हैं कि आपकी किस्मत तो बहुत बढ़िया है, आपको क्या मतलब क्या कहते हैं एक शेफ आपको मिल गया खाना बनाने के लिए और क्या चाहिए, तो बोले कि ना इनको जवाब दो सबको कि भैया क्या कहते हैं ये शेफ है, ये दिखाने का शेफ है, ये बर्तन कौन धोता है, इसमें सारे जो बर्तन कर देता है ना शेफ दुनिया भर के, ये कौन धोता है, और घर में खाना हम ही बनाते हैं शेफ
भैया, तो घर की जो टीम है ना ये भी जरूरी है, इसके बिना तो हम ना खाना बना सकते हैं ना शूटिंग कर सकते हैं, तो ये मौका हम लेते हैं और थैंक यू करना चाहेंगे अपने घर में अपनी वाइफ का, अपनी मदर का, या वो तमाम लोग जो घर में 24/7 बिना ऑफ लिए हमारे लिए खाना बनाते हैं। सो इन तमाम महिलाओं के लिए मेरा नतमस्तक और मैं नमन करता हूँ और बहुत इनको अभिनंदन करता हूँ कि ये हम सब के लिए लगातार अच्छा भोजन बनाते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लेडीज हु आर वॉचिंग दिस और तमाम महिलाएं जो घर पर हैं।
बिल्कुल,
तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने तो खाना बनाना है, होटल में बनाए, स्टूडियो में बनाए, कैटरिंग में बनाए, हमने तो खाना बनाना है। होटल में हम किसी और के लिए काम करते थे, यहाँ पर हम अगर अपने लिए यही काम करेंगे तो जो भी हम इससे कमाएंगे वो हमारा है। नंबर ऑफ आवर्स कितने करना है ये हमारे कंट्रोल में है, अपने को कितना बड़ा बनाना है ये हमारे हाथ में है। सो बहुत अच्छा फैसला लिया आपने और अपने खुद के लिए अब आप काम करते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। इस जर्नी में, होटल में, कैटरिंग में, मीडिया में, इस जर्नी में कुछ तो आदमी सीखता है, तो ऐसी कोई दो लर्निंग जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने लिसनर से कि मेरे ये मेरे लिए सबक हैं या लर्निंग्स हैं?
दो तीन वाक्य स्टार्टिंग में थी सर, जैसे कि एक तो पालक की जब सब्जी बनती है एक होटल्स के अंदर जहाँ पे पालक की सब्जी बनती है, अगर उसकी धुलाई नहीं हुई सेटिंग से, उसको वॉश नहीं किया है, थोड़ी सी भी अगर उसके साथ में गड़बड़ कर दी तो आप मतलब इतना बड़ा मतलब बवंडर हो जाएगा, बहुत बड़ा वाला, कि मतलब आपके जितना आपका बुफे कितना भी बढ़िया हो। तो एक ऐसा ही वाक्यात हो गया था उसके अंदर, तो वो मेरे सबक जिंदगी भर रहता है मेरा, कि जैसी कोई लीफी वेजिटेबल मेरे सामने आ जाती है ना, तो मेरे को वो वाक्यात हमेशा याद आ जाता है कि हाँ ये एक बहुत बड़ा बवंडर हो जा। एक बहुत बड़ी वेडिंग थी जिसके अंदर पूरा बहुत लेविश बुफे लगा हुआ था और है ना पालक की सब्जी के अंदर मिट्टी आ गई थी और जो जो होस्ट था उसको वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हुआ था वो चीज का। तो मेरे को हमेशा लगता है कि हाँ जो लीफी वेजिटेबल आ गई आपकी, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ,
खुले पानी, उसको खुले पानी में धो लो।
एक मेरे हाँ बिल्कुल खुले पानी से, जैसे ओपन पानी में एक बड़े बर्तन में धोना चाहिए, ऊपर ऊपर से उठाना चाहिए, फिर नीचे चेक करिए कि हाँ मिट्टी आई नहीं आई, फिर उसको सेकेंड थर्ड जितनी बार भी उसको धोना है, अगर मिट्टी आ रही है तो उसको फिर वापस से आपको
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो ये एक मेरे साथ वाकया हुआ था। एक चीज और है, एक हमारे शेफ हुआ करते थे गोपाल शेफ, मतलब वो कहीं बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, नेपाली शेफ हुआ करते थे, तो मैं सेकेंड कॉमी या थर्ड कॉमी था, तो उस टाइम वो मतलब वो क्या बोलते थे कि अपने मसालों को वो भिगाते थे, अपने इंडियन जो मसाले होते हैं उनको भिगाते थे, मतलब सूखे मसालों में क्या दिक्कत आ रही है। बोले नहीं, बना के देखो तुमको चक्कर पता लग जाएगा, जैसे मिर्ची का पाउडर मार्केट में मिलता है, लेकिन एक काम करो सूखी मिर्च को पेस्ट बना के इसको डालो, तो तुमको उसका टेस्ट का डिफरेंस पता लग जाएगा, क्या डिफरेंस है एक पाउडर का और एक पेस्ट का क्या डिफरेंस होता है। तो मसालों को भिगो कर खाने में डालने का एक अलग ही अंदाज था, और हमेशा बोलते थे कि मसाले हमेशा आँच को धीमी रखो, और ना ही मसाले बहुत जोर करेंगे और तुमको हमेशा खाना अच्छा नहीं बनेगा।
बिल्कुल ठीक, क्यों कहा जाता है कि मसाले जल जाएंगे और जलने से बचाने के लिए उसको घोल कर डालते हैं, ये कई लोग करते भी हैं और बहुत अच्छा उनका ये, इसको टोटका कहते हैं, तो बहुत अच्छा टोटका है उनका जो करते हैं और ऐसा मानते हैं वो कि ऐसा करने से मसालों का स्वाद और भी बेहतर आता है जब डिश बनती है। तो ये तो आपको लर्निंग्स थी जो आपके लिसनर्स ने सुना, लेकिन कुछ शेफ जो हैं जो अब इंडस्ट्री में आ रहे हैं, अभी IHM या होटल मैनेजमेंट या कुकिंग का क्राफ्ट कोर्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, उनको यानी इन बडिंग यंग शेफ्स को आप क्या कहना चाहेंगे?
जो यंग शेफ आ रहे हैं सर, मोस्टली मैंने देखा है अभी जो जो जनरेशन आ रही है, पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, उनको ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ आता है, कोई भी जैसे आप रेसिपी कोई बना रहे हो तो फटाफट से गूगल कर लेना या उसका वीडियो देख लेना, फिर उसको क्या कहते हैं उसके साथ में क्या कहते हैं वो करना कि हाँ ये तो बहुत आसान काम है, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत आसान है। और जो यंग जनरेशन आ रही है उन एक चीज होती है, जैसे अब हमारी शेफ लोगों की भाषा में बोलते हैं ना कि झटका मार दिया, लस्सी घोल दी, मतलब कि मतलब आपने उसको जरूरत थी वहां पे कुछ डालने की और आपने डाला नहीं। तो मेरा एक छोटा सा कंसर्न था उनको बोलने के लिए कि आप ऐसे करके जल्दी तो काम कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपका हाथ सेट हो जाएगा काम खराब करने के लिए, फिर आप कितनी भी कोशिश करोगे आपके हाथ में टेस्ट नहीं आने वाला है। अगर ये झटका मारना है आपकी आदत बन गई, उसके बाद में आप कोशिश भी करोगे तो भी आपके हाथ में टेस्ट नहीं आने वाला है। और जब इंडस्ट्री में नए नए जनरेशन आती है, लोग आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा मतलब बहुत आसान काम है, लेकिन यही वाली बात है कि इसमें हार्डवर्क बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री के अंदर, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हार्डवर्क है और हमेशा हार्डवर्क रहता ही रहता है। कि खाना बनाना आपको अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको होटल के अंदर बल्क्स में इतने हजारों लोगों के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है? दोनों बातें अलग अलग हैं, कि एक दो चार लोगों के लिए खाना बनाना और एक 400 लोगों के लिए खाना बनाना दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो बाद में पता लगेगा। तो ये चीज आपको पहले से दिमाग में रहनी चाहिए कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो चार लोगों का खाना नहीं बनाना, मेरे को 400 या 4000 लोगों का खाना बनाना है। तो मेरी सोच उस हिसाब से होनी चाहिए, मेरा हार्ड वर्किंग उस हिसाब से होने वाला है।
आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल की जो यंग जनरेशन है उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी सब कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत इंपेशेंट हैं, सब कुछ उनको जल्दी से चाहिए, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं और जल्दी से बड़ा होना चाहते हैं। और ये एक प्रोसेस होता है काम सीखने का, एक अप्रेंटिसशिप या एक ट्रेनिंग, उसके बाद आप धीरे धीरे अपने हुनर में माहिर होते जाते हैं, फिर आपको रेसिपीज के साथ थोड़ा बहुत इनोवेशन और ट्वीकिंग करना आना शुरू हो जाता है कि अगर मैं ऐसे नहीं करके ऐसे डालूंगा तो क्या होगा, तब बदलाव क्या आएगा इसमें। तो ये जो पेशेंस और सब्र चाहिए सीखने के लिए, ये ओवरनाइट शेफ बनने का जो ख्याल है ना, ये बिल्कुल गलत धारणा है। आपको बहुत मेहनत लगती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये टाइटल शेफ जो है इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, उस्तादों की सेवा, रेसिपीज को बार बार बनाना, नई नई रेसिपीज को ट्राई करना, इंग्रेडिएंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना कि मिर्ची ये वाली क्या इस्तेमाल करने से क्या होगा, ये हल्दी कैसी है, पेस्ट बना के डालूंगा तो क्या होगा। यू आर राइट, आजकल के बच्चे थोड़ा सा जल्दी करते हैं, तो ये उनके लिए एक एडवाइस है कि सहज पके सो मीठा होए, तो आराम आराम से धीरे धीमे आँच पे पकाएं और धीमे धीमे सीखें, जल्दीबाजी ना करें। और आपने ये भी अच्छा कहा कि जो यंग बडिंग शेफ्स हैं उनको पेशेंस के अलावा एक और चीज़ होनी ज़रूरी है, वो है अनुशासन। यू नो, आपको अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी सही है कि आपने कहा कि चार लोगों के लिए बनाएं या 400 के लोगों के लिए बनाएं, इसमें बहुत फ़र्क होता है, अप्रोच अलग हो जाती है, तरीका काम करने का बदल जाता है। तो आई एम श्योर लिसनर और व्यूअर्स जो भी इसको सुन रहे हैं वो इससे काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। तो शेफ़, जैसे मैं अगर अपना टीवी शो करता हूँ तो मेरा एक अंदाज़ है बोलने का, तो मैं चाहूँगा कि आप जब अपना टीवी शो या कुकिंग शो शुरू करते हैं तो उसमें ओपनिंग लाइन आपकी कैसे होती है, उसी अंदाज में एक बारी हमारे लिसनर्स को सुनाइए अपना स्टाइल बोलने का।
तो कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ ओपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनेस्ट किचन में।
क्या बात है, और ये जो साउंड है ना, ये मैं जितनी बार भी सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो आपकी आवाज में थोड़ा जिसे बोलते हैं ना बेस है, बहुत भारी है, अच्छी आवाज है। तो जब आपकी आवाज़ में वजन है, आपके काम में वजन है, तो ऑनेस्ट किचन को तो लोग पसंद करेंगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ये बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में सुन के, आपके बारे में जान के, आपकी स्ट्रगलिंग और आपका जो सीखने का पीरियड था, कैसे धीरे धीरे आपने ग्रो किया। आई एम श्योर इससे हमारे यंग बडिंग शेफ्स भी काफ़ी कुछ सीखेंगे, हाउसवाइफ्स को भी अच्छा लगेगा और होम शेफ्स को भी पसंद आएगा। सो थैंक यू वेरी मच शेफ भूपेंद्र।
थैंक यू सर, थैंक यू।
तो ये थे हमारे आज के मेहमान शेफ भूपेंद्र, हमने सुनी इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे एक और नए हुनरबाज के साथ। तब तक के लिए आप सबको राकेश सेठी का स्वाद भरा नमस्कार।
बियॉन्ड कुकिंग विद शेफ राकेश सेठी,
अ पॉड वन प्रोडक्शन।